ओम शांति। हम मुरली रिवाइज करें। उससे पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि जब आप भट्टी के बाद जाएंगे यहां से, तो आपके पुरुषार्थ में, एफर्ट में कुछ न कुछ परिवर्तन अवश्य होना चाहिए। और जो हम चलते फिरते योग करते हैं, चलते फिरते सेवा करते हुए, तो ये भी बहुत आवश्यक है। लेकिन 1969 की एक मुरली है जिसमें बाबा ने बताया है कि यदि 2 घंटे से कम बीज रूप अवस्था है तो आपका जो संस्कार है ना, वो परमानेंट चेंज नहीं होगा। आपको लगेगा, ऐसा महसूस होगा कि हमने क्रोध जीत लिया है, हमारा ये परिवर्तन हो गया है। लेकिन जब वह फिर से कोई ऐसी बात आएगी तो वो संस्कार फिर से जागृत हो जाएगा। तो इसीलिए अभी यहां से जाते जाते आपको यहीं से लक्ष्य बना लेना है कि हमको 2.5 घंटा कम से कम बैठ के योग करना है। 2.5 घंटा बैठ के एकांत में, और वो भी क्या, बीज रूप अवस्था। बीज रूप अवस्था या ज्वालामुखी योग, ये दोनों। तो बीज रूप अवस्था, अभी तो हमें मुरली रिवाइज करना है इसलिए ज्यादा इस पर प्रकाश नहीं डाल सकते, लेकिन 2 मिनट में हल्का सा बता देते हैं कि जैसे मान लीजिए यहां लाल लाइट हो जाती है, लाल लाइट हो जाती है तो आपस में बात करते हैं, बात करते हैं कुछ नहीं। क्या करते हैं फिर, यदि कुछ बात करना भी है, इशारा करते हैं कि चलो बाहर, बाहर चल के बात कर लेते हैं, कुछ कहना है, करते हैं ना, कि यहां बात करते हैं। तो जब लाल लाइट है तो हम समय को देखते हैं, स्थान को भी देखते हैं कि यहां हम बात नहीं कर सकते, है ना। ये समझना है, इसको आप समझ लेंगे। तो ऐसे ही जब परम धाम में जाते हैं, परम धाम में क्या है, लाल लाइट, वहां बाबा से बात नहीं करते हैं। समझ में आया, परम धाम में यदि हम बाबा के पास गए तो बाबा से बात नहीं करते हैं, क्या करते हैं, उसी स्थिति में बैठ जाते हैं, है ना। संकल्पों की भाषा कहाँ है, सूक्ष्मतन में, सूक्ष्मतन में हम रू रिहान करते हैं, लेकिन परम धाम में उसी स्थिति में। इसीलिए बाबा ने एक मुरली में कहा है कि आओ और बिंदु बनकर मेरे पास बैठ जाओ, और कुछ करो ही नहीं आप, लेकिन इसके लिए ध्यान देना है कि जब परम धाम में स्थित होना है तो डबल बिंदु देखें, क्योंकि बाबा ने कहा कि जब एक बिंदु देखेंगे तो लंबे समय तक स्थित नहीं हो पाएंगे आप योग में। तो इसलिए कम से कम 2-2.5 घंटा जरूर करना है बीज रूप अवस्था का योग। तो जस्ट आप 2 बिंदु देखें परम धाम में, एक बाबा और एक मैं, और बाबा से जुड़ जाएं, और कोई संकल्प नहीं। तो ऐसी अवस्था में कम से कम 2-2.5 घंटा रोज रहेंगे, तब जाकर के संस्कार चेंज होंगे। तो जैसे ये बीज रूप अवस्था है, इसमें ऐसी फीलिंग होती है कि हम बाप समान हैं। ऐसे ज्वालामुखी योग, ज्वालामुखी योग अर्थात जहां पूर्वज की भावना है कि हम पूर्वज हैं, बाबा से वाइब्रेशंस ले और सारे सृष्टि पर दे रहे हैं, इसको भी हम 2 घंटा कर सकते हैं। तो इसलिए टाइम निकालना पड़ेगा, यहां से जाने के बाद भी 2.5 घंटा कम से कम कहीं बैठें, आधा आधा घंटा, आधा घंटा सुबह, जब भी आपको टाइम अवेलेबल है। तो ये एफर्ट करना पड़ेगा, केवल चलते फिरते योग करने से ये परिवर्तन नहीं होगा। अब यह है कि मुरली कैसे सुने। मुरली सुनने का तरीका बाबा ने क्या बताया है, कैसे सुने मुरली? आत्मा समझकर। बाबा ने जो बताया है कि मुरली सुनने का तरीका है रियलाइज, है ना, जो ही हम सुनते हैं ना उसको क्या करते जाएं, अनुभव करते जाएं, देखते जाएं, कहते हैं कोई चीज भी रखते हैं ना तो उसको देखते जाएं। कोई चीज को आप रखते हुए देखते हैं ना तो भूलने की संभावना बहुत कम है। अगर आप भूल भी गए ना तो आपको याद आएगा कि हाँ मैंने रखा था यहाँ, इतना याद आ जाएगा। तो इसीलिए कोई भी चीज कहीं रखते हैं तो एक बार देखें। तो ऐसे ही जब मुरली भी सुनते हैं तो उसको किससे देखें, बुद्धि रूपी नेत्र से, है ना। जैसे कहा बाबा, बाबा सुनते ही बाबा कहां दिखाई दे, परम धाम। एक सेकंड के लिए ही सही, एक सेकंड के लिए ही सही, कहां इमेज करें, परम धाम, उसके मध्य बिंदु, है ना। तो इसीलिए गांव में भी कहते हैं कि एक साधे सब साधे, है ना, और सब साधे सब जाए। इसीलिए बाबा भी क्या कहते हैं कि आप सब पुरुषार्थ करो, हर एक कुछ भी छोड़ो नहीं, लेकिन एक में मास्टरी होनी चाहिए। आप अपने को देखो कि मुझे क्या पसंद है, वो अभ्यास रेगुलर करना है, जो आपको सहज लगता है। तो आप रेगुलर करेंगे तो उसी से जो आप करना चाहते हैं वहां तक पहुंच जाएंगे, है ना। तो इसीलिए जब हम मुरली सुनते हैं तो उसको हम देखें सामने। तो जैसे बाबा ने कहा कि भारत किसकी जन्मभूमि है, भारत दिख रहा है, भारत को देखें, किसकी जन्मभूमि है, शिव बाबा। और क्या क्या कहा बाबा ने, कैसे बाप की, सुखदाता बाप की, ऐसे कहा ना बाबा, सुखदाता बाप की जन्मभूमि है। तो बाप क्या करने आए हैं, सभी बच्चों को क्या करने आए हैं, दुख से छुड़ाने, है ना। तो अभी यहां ये देखना है सुख की सुखदाता बाप है, वो सुखदाता कैसे है, वो कैसे सुख देते हैं, और जो बाबा हमें दुख से लिबरेट करते हैं ना, वो कौन सा टूल्स है, कौन सा हथियार है या कौन सा उपकरण है जिससे बाबा हमें दुखों से मुक्त करते हैं। तो ये हमें बाबा से सीखना है ना, जो भी हम सुन रहे हैं उसे हमें बाबा से टैली करना है कि सुखदाता बाप की जन्मभूमि है भारत, तो हम भी क्या है, हमें भी क्या बनना है, सुखदाता। तो बाबा कैसे सुख देते हैं, क्यों सुख कैसे दे पाते, क्योंकि बाबा कहां है ना, जो जितना उपराम होगा ना, कोई बिल्कुल उपराम है ना, उसको देखने से ही आपको बहुत सुख की भावना आएगी, है ना। और जितना पवित्र है, जो जितना प्योर है ना, वही दुखों से लिबरेट कर सकता है, क्योंकि बाबा क्या कहते हैं कि पवित्रता किसकी जननी है, सुख और शांति की। तो मीन्स क्या हुआ कि यदि पवित्र है, जितना पवित्र बनते ना उतना हम सुख महसूस करते हैं और दुखों से छूटते जाते हैं। दुख कहाँ है? जहां अनेक संकल्प हैं, अशांति है, कहते हैं ना, दुख और अशांति दोनों कनेक्शन है। या तो दुख से अशांति, या जितना हमारा उधेड़ गुण में है संकल्प, उतना ही दुख की भावना है ना। तो जो ही हम मुरली सुने तो सुखदाता बाप कहां? परम धाम में, ऊंचे से ऊंची स्थिति में बाबा को देखो। वहां से बाबा आए और दुखों से लिबरेट कैसे कर रहे हैं? पवित्रता की शक्ति देकर। तो हमें भी हर एक को ये मदद करनी है, है? तो इसीलिए जब मुरली सुने तो उसे देखते जाएं बुद्धि रूपी आंखों से। दूसरा बाबा ने क्या कहा कि बहुत बड़ी और लंबी है ना कहानी, कौन सी है? ड्रामा के आदि मध्य अंत की। अच्छा, तो बाबा ने क्या कहा? ये दुनिया में और कोई नहीं समझ सकते, समझ सकते हैं कोई? और आपके लिए क्या है? बाबा ने क्या कहा आपके लिए क्या है? कामन है। तो क्या कामन है दिख रहा है आपको? कामन है, क्या कामन है? कि ये सृष्टि क्या है, जो सृष्टि चक्र है, हू बहु क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। और ये सीढ़ी कैसे चलती है? बाबा ने कहा ये भी आपको पता है ना। तो सृष्टि चक्र है, तो सृष्टि चक्र हू बहु रिपीट होता है, जिसको आजकल कहते हैं पारा साइकोलॉजी है ना, उसमें कि आजकल बहुत सारी ये घटना होने लगी है जिसको कहते हैं टाइम स्लिप। मालूम है टाइम स्लिप? टाइम स्लिप उसमें क्या होता है कि कभी कोई व्यक्ति मान लीजिए 30 साल का है और अचानक ऐसी घटना होती है कि वो अपने जो 90 साल की एज में उसकी घटना होने वाली है ना, वो दिखाई देती है, वो लोग और सब कुछ, और उसको ये महसूस भी होगा कि ये फैक्ट है, ये मेरी ही बात है। तो इससे क्या पता चलता है? दुनिया में मान कि फिक्स है, तब तो दिख रहा पहले से है ना। और जैसे सृष्टि चक्र हु बहु रिपीट हो रहा है, तो जैसे कहते हैं ना सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, तो जैसे मान लीजिए सतयुग में कौन रहेंगे, किसका राज्य होगा, है ना? तो ऐसा तो नहीं कि इस सतयुग में ये होगा, उसके बाद सतयुग जब आएगा तो उसमें हर, है ना? तो अपने अपने समय पर है ना। जैसे कोई बचपन है तो बचपन में बच्चा क्या होता है? छोटा ही होता है ना। वही बच्चा बड़ा होगा तो कैसा होगा? आज 10 साल की एज में वो बच्चा कैसा है, और जब 90 साल का होगा तो बच्चा कैसा होगा? तो क्या हो रहा है? कोई कर नहीं रहा है, समय के साथ नेचुरल होना ही है। केवल समय अगर बीत रहा है ना, आप कुछ भी नहीं कर रहे तो भी बच्चे से युवा, युवा से वृद्ध। तो इसीलिए बाबा ने कहा ना आज कि दिन दिन और रात है ना, तो यह आना ही है। ऐसा नहीं कि हमेशा सुखी चलता रहेगा, सुख होगा धीरे 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 घटता जाएगा, फिर दुख की शुरुआत भी होती है। और बाबा ने क्या कहा? महिमा किसकी की जाती है? महिमा किसकी की जाती है? जो महान होते हैं ना, महान कौन होते हैं? जो सुख देते हैं, अनेकों को सुख देते हैं, उनकी क्या करते हैं? महिमा की जाती है ना? और सबसे ज्यादा सुखदाता कौन है? बाबा। बाबा एक दो आत्माओं को नहीं सुख देते, सर्व आत्माओं को सुख देते हैं, है ना? और बाबा की महिमा इसीलिए क्या करते हैं, जैसे आज कहा ना गीत में, पितु मातु सहायक है ना, सारे जो संबंध है हमारे किससे हैं, बाबा से हैं। तो ये जो महिमा है बाबा की, इसे हमें, इसीलिए केवल आप एक बार मुरली सुनने से नहीं होगा, इसलिए कहते हैं कि मुरली कम से कम 4-5 बार पढ़ें, 4-5 बार मुरली पढ़ें, तो वो भी सारी मुरली याद करने से केवल नहीं होगा, उसमें से आपको 1-2 पॉइंट्स निकालना है, 2 पॉइंट्स जो सबसे अच्छे आपको लग रहे हैं, और दिन भर उसी में चिंतन करते रहना, विचार सागर मंथन। तो इससे क्या होगा, मगन अवस्था हो जाएगी। मुरली ऐसे इस तरह से भी आप कर सकते हैं, यदि आपके पास मुरली है तो उसको पढ़ें 4-5 बार, नहीं है तो 2 पॉइंट ही सही, आप उसको लेकर के उस पर चिंतन करते रहे, है ना। तो इसीलिए बाबा ने क्या कहा कि सुखदाता बाप है ना, तो उसकी महिमा इसीलिए करते हैं कि सबको सुख देता है, है ना। और बाबा ने क्या कहा कि भारत जो है ना, ये किसकी जन्मभूमि है, सुखदाता बाप की। और रावण की जन्मभूमि कहां है, कौन बताएगा, मालूम है किसी को, रावण की जन्मभूमि कहां है, भारत में ही है। अच्छा, तो आप लोग बहुत ध्यान से मुरली सुनते हैं लगता है, नहीं सबको याद है, सबको पता है। तो आज बाबा ने ही कहा कि भारत जो है सुखदाता बाप की भी जन्मभूमि है और दुखदाता रावण की भी। अभी सुख किस आधार पर मिलता है, बाबा क्या करते हैं, मुरली के लास्ट पेज में बाबा ने बताया था कि जब आप देही अभिमानी स्थिति में स्थित होते हैं, है ना, आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं, तो क्या होता है, सुख के तरफ बढ़ते जाते हैं, सुख की अनुभूति होती जाती है ना। इसीलिए जो सतयुग में वास्तव में योग तो नहीं करते हैं, जो कहते हैं ना कि योग बल से सतयुग, तो वास्तव में वहां जो आत्मा की भाषणा है, जो एहसास है, ज्ञान नहीं है लेकिन उसका जो एहसास है, उसको ही कहते हैं कि जो आत्मा की अनुभूति, उसको ही बल नाम दिया है, उसको भी योग बल कह सकते हैं, बाबा ने कहा है एक मुरली में। तो जब हम ये जो आत्मा का एहसास है ना सतयुग में, वो धीरे धीरे क्या होता जाता है, धीरे धीरे बढ़ता जाता है, सही है, नहीं बढ़ता है, तो धीरे धीरे जब समय बीतता जाता है तो क्या होता है, ये अनुभूति कम होती जाती है, और जब देही अभिमानी स्थिति की अनुभूति बिल्कुल समाप्त हो जाती है, फिर क्या शुरू होता है, देह अभिमान। तो जो देह भान में आ गए, यहीं से किसकी उत्पत्ति होती है, रावण की, है ना। तो बाबा तो जैसे मूर्त रूप है, बिंदु है ना, बीज रूप है बाबा, बिंदु है ना, ऐसे रावण क्या है, वो भी मूर्त रूप है क्या, रावण भी अमूर्त, उसका कोई अपना स्वरूप नहीं है, वो कहां से दिखाई देता है, अगर कोई आत्मा है और उसका स्वभाव संस्कार बहुत ही महान हो जाता, मान लीजिए दूसरे तरीका का व्यवहार करता है और फुल फोर्स से, तो क्या कहते हैं, ये तो जैसे किसका रूप है, रावण का, जो अनेकों को दुख देते हैं, है ना। तो ये रावण की उत्पत्ति जो बाबा ने कहा ना कि दुखदाता की भी उत्पत्ति है, किससे हो गया, जो ही हमने देह समझा, देह भान में आए, यहां से रावण की उत्पत्ति शुरू। और जब हम सुखदाता बाप को याद करते हैं अर्थात जब अपने को आत्मा समझते हैं, तो ये जो सुखदाता बाप है उसी की भी हम अनुभूति करते हैं। और बाबा ने क्या कहा कि जब हम अपने को देही समझते जाते हैं, देही है ना, आत्मा समझ करके याद करते हैं और पवित्र बनते हैं, तो बाबा ने कहा कि आप अपने को भी जान जाते हैं। ये आज कहा ना बाबा ने, क्लियर कहा कि केवल इसी जन्म की बातें नहीं, जब हमारा पुरुषार्थ संपूर्णता की तरफ होगा ना तो हम पूरे सृष्टि चक्र में भी अपने को देख सकते हैं कि हमारा क्या क्या पार्ट था। और ये तभी होगा जब हम संपूर्ण रीति से पावन बनेंगे। तो इसीलिए हमको जितना हो सके देही अभिमानी स्थिति में स्थित होना है, देही स्थिति में, तभी हम पावन बनेंगे। और इसीलिए बाबा कई बार कहते हैं ना कि ये जो ज्ञान है नया ज्ञान है, तो नया ज्ञान क्या है, आज की मुरली में नहीं कहा बाबा ने, अव्यक्त वाणी में कहा है, नया ज्ञान क्या है, पवित्रता। बाबा ने कहा कि नया ज्ञान प्रत्यक्ष होगा दुनिया में, क्या, पवित्रता। जब प्रत्यक्ष होगी ना तो यही है नया ज्ञान, यही है नवीनता, है ना। और बाबा ने क्या कहा कि साधारणता द्वारा किसको प्रसिद्ध करने वाले, महानता को प्रसिद्ध करने वाले सिंपल और सैंपल। तो कई बार क्या होता है जब ये हम पढ़ते हैं ना साधारणता द्वारा, है ना, तो कई बार क्या होता है किसी को आप पूछो ना आपको वरदान याद है क्या, तो क्या करते हैं, दो लाइन ऊपर का सुना देते हैं और कहते हैं कि दो लाइन मेन मुख्य रूप से, हाँ, फोर्सफुली उसको बताएंगे वरदान ये है, बाकी नीचे तो एक्सप्लेन है, उस अब इतना टाइम तो नहीं है कि उसको पढ़ें, ऐसे कहते हैं ना। लेकिन जबकि वास्तव में जो बीच में जो एक्सप्लेनेशन है ना वही बाबा के महावाक्य है। जो वरदान की मोटी लाइन है वो तो इसलिए बनाया गया है हमको सहयोग देने के लिए कि हम वरदान को याद कर सकें, इसके लिए। तो इसीलिए हमको हल्का नहीं होना कि हम तो मोटी लाइन दो लाइन याद है केवल, याद नहीं, उसको हमें समझना है, है ना। तो जैसे कहा सिंपल और सैंपल भाव किसके द्वारा, तो जब साधारणता, जैसे कहा ना साधारणता द्वारा किसका अनुभूति कराएं, महानता की, है ना। तो इसमें क्या हो जाता है, साधारण बनने से क्या हो जाता है, जब कोई साधारण बनता है ना तो उससे क्या होता है, उस सेलिब्रेशन कम लेता है। कोई भी जब साधारण रहता है ना उस सेलिब्रेशन कम लेता है। जैसे कोई मान लीजिए आपको तीन ड्रेस मिल गए और कहीं कुछ भी सुविधा नहीं है, तो आपने क्या किया, आपने ड्रेस लिए और जो दो भाई उनके पास नहीं आपने एक एक दे दिया उनको, तो आप साधारण में होंगे ना, आपने फिर साधारण जब बने तो आपने अनेकों को हेल्प किया। नहीं तो आप कहो हमारे पास तो तीन ही ड्रेस है, हमको तीन तो और चाहिए, तो आप क्या करेंगे, फिर दूसरे का भी ले लेंगे, साधारणता तो गई ना।